हमारे साथ हैं साबिक सफीर जनाब मुश्ताक अहमद मेहर साहब, और हमें इस सेगमेंट में मजीद ज्वाइन करें आरिफ अंसार साहब, चीफ एनालिस्ट विद पॉलिटेक्ट। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। आरिफ अंसार साहब, आपसे शुरू करते हैं, अगरचे पहले हम दाइश पे बात कर लेते हैं। उसके खिलाफ फिजाई और जमीनी कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, शिद्दत आई है। आपको लगता है कि ये खासतौर पर अगर सिंजार का इलाका उनसे ले लिया जाता है तो उनको दिफाई एतबार से बहुत शदीद नुकसान पहुंचेगा?
जी हाँ, वो तो सही है बिल्कुल आपकी बात असद साहब, लेकिन मैं इसके साथ ये भी कैवियट जो अंग्रेजी में कहते हैं कि ऐड करूं कि ये टेक्टिकल लेवल पे काफी अरसे से चल रहा है कि एक टाउन ले लिया, इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है, फिर उसके ऊपर कुछ अरसे बाद किसी और ने कब्जा कर लिया, तो ये एक किस्म का वो बैक एंड फोर्थ चल रहा है। मेरा ख्याल में कि हम स्ट्रेटेजिकली ये नहीं कह सकते कि क्या ये वाकई कोई वेव पासा पलट रहा है या गेम चेंजिंग कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, कि वाकई ये जो मंथ टू मंथ चल रहा है पूरी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन का उस तरह की कोई कार्रवाई है कि ठीक है वक्ती तौर पे हो जाता है, फिर उसके बाद दाइश या एक्सट्रीमिस्ट कनेक्टेड ग्रुप्स जो है वो किसी और जगह जोर दिखा देते हैं, तो ये कहना जरा कबलस वक्त है। साथ ही आपने वो पॉलिटिकल जो डिस्कशन चल रही है, मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा अहमियत रखेगी कि ओवरऑल कंसेंसस ग्रुप्स जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आपने रूस, अमेरिका और रीजनल पावर्स ईरान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, जीसीसी कंट्रीज, वो किस लेवल पे कंसेंसस बना पाते हैं किसी चीज पे, सीरिया पे खासतौर पे। मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा दूरस नतीजे निकालेगा बजाय इसके कि ये जो बजाहिर डे टू डे जो अप्स एंड डाउन चल रहे हैं।
सही जी। मुश्ताक अहमद मीर साहब, आपके ख्याल में क्या ये बैक एंड फोर्थ इसी तरह कामयाबी और फिर उनका रिकैप्चर करना, ये इसी तरह की कोई एपिसोड है, या लगता है कि ये कोई फैसला कुन कार्रवाई होने जा रही है दाइश के खिलाफ?
जी नहीं, ये फैसला कुन नहीं होगी, बल्कि इस किस्म के इवेंट्स होते रहेंगे, ये कहीं पे उभरेंगे, कहीं पे ये दब जाएंगे, ये काफी तो रहेगा। लेकिन एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट देखा हूँ वियना नेगोशिएशन में, खासतौर पर जब से ईरान से रिस्ट्रिक्शन हटाई गई है तो ईरान बहुत एक्टिव हो गया इस प्रोसेस में। मेरे ख्याल में ईरान ने अमेरिका और रूस दोनों से कहा है कि इसका रेजोल्यूशन यू है कि जो प्रेसिडेंट बशर है उनको तो बेशक हटा दें, लेकिन जो इंटेग्रिटी ऑफ सीरिया है उसे आप मेंटेन करें और उनको तीन हिस्सों में तकसीम ना होने दें, कुर्द और सुन्नी और जो अलवाइस का जो एक डिवीजन सोचा जा रहा था। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, और रशियन और अमेरिकन अगर ये कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे दाइश पे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा चांस है कि दाइश एक सप्रेस हो जाएगी। मेरा तो मैंने बहुत सुना आपके प्रोग्राम में आज किया है कि ये एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट्स होती रहती है, हमने फार ईस्ट में भी देखा है, अफ्रीका में भी देखा है, लेकिन ये कामयाब नहीं होती जब तक कोई सुपर पावर या कोई रीजनल पावर इनको सपोर्ट ना करे। मेरी अपनी एस्टिमेशन ये है कि अगर अमेरिका और रशिया के दरमियान, चूंकि अब वहां पे उनके ट्रुप्स आ गए हैं और मैं नहीं समझता कि वो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ हमें ले जाएंगे या एटम बम इस्तेमाल करेंगे या एक दूसरे को, हालांकि फीलिंग ये है कि जो रशियन जहाज शर्म शेख में एक्सीडेंट हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि CIA के जो हाइड आउट से सीरिया में वहां पे बम्बार्डमेंट कर रहे थे रशियन एयरफोर्स वाले, तो उन्होंने शर्म शेख में उसका बदला लिया। बट ये कंस्पिरेसी थ्योरी है। अब रशिया में और अमेरिका में काफी हद तक ईरान के मेडिएशन की वजह से अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और वो अगर प्रेसिडेंट बशर असद जो है वो मेरे ख्याल में एक नया इलेक्शन कराने के लिए भी तैयार हैं। अगर वहां पे नया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाता है, इंटेग्रिटी ऑफ रशिया ऑफ सीरिया का एक रेजोल्यूशन आ जाता है इन तीन चार मुल्कों में, तो बहुत अच्छे चांस हैं कि दाइश को फिर आप सब लोग मिलकर सप्रेस कर सकेंगे।